नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। चालू वित्त वर्ष में अभी तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 20.66% बढ़कर 13.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आयकर विभाग ने सोमवार को बताया कि 17 दिसंबर 2023 तक 13,70,388 करोड़ रुपए के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 6.95 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट कर से मिले। व्यक्तिगत आयकर की हिस्सेदारी 6.73 लाख करोड़ रुपए रही। इसमें प्रतिभूति लेन देन कर शामिल है। चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान के 75% तक पहुंच गया है। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष करों से 18.23 लाख करोड़ रुपए जमा होने की उम्मीद है। इसमें व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट कर शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में 17 दिसंबर 2023 तक 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के रिफंड भी जारी किए जा चुके हैं। एडीबी ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल गलियारे के निर्माण और औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 25-25 करोड़ डॉलर के दो कर्जों को स्वीकृति दी है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि 82 किलोमीटर लंबे RRTS गलियारे के निर्माण के लिए ADB 25 करोड़ डॉलर का वित्त मुहैया कराने जा रहा है। ADB ने वर्ष 2020 में RRTS के निर्माण के लिए 104.9 करोड़ डॉलर का वित्त पोषण कई चरणों में मुहैया कराने पर सहमति जताई थी। पहली किस्त में 50 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया था। वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी ने कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि इस निवेश से RRTS शहरी परिवहन में सुधार ला पाएगा और इससे महिलाओं एवं दिव्यांगों को भी आर्थिक लाभ होंगे। ADB ने विनिर्माण को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त करने के लिए औद्योगिक गलियारा विकास के लिए भी 25 करोड़ डॉलर के एक कर्ज को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने बैंकिंग सेवाओं से वंचित नागरिकों के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है और इससे अब तक करीब 51 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। PMJDY को 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेश के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बैंक सुविधा से वंचित हरेक व्यस्क को बैंक सुविधाओं और बुनियादी बैंक खातों तक पहुंच मुहैया कराना था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि इस योजना के कुल लाभार्थियों में से 55.5% महिलाएं हैं। मंत्रालय के मुताबिक 22 नवंबर तक इन खातों में कुल 2.10 लाख करोड़ रुपए जमा थे। हालांकि इस योजना के तहत खोले गए कुल 4.30 करोड़ खातों में शून्य राशि ही जमा थी। इसकी वजह यह है कि जनधन खातों में कोई भी न्यूनतम राशि रखने की बाध्यता नहीं है। सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया तथा अर्बन कंपनी से अभिराज सिंह भल और स्नैपडील से कुणाल बहल सहित 31 गैर आधिकारिक सदस्यों को मनोनीत किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने देश में नवोन्मेष और स्टार्टअप के विकास के मकसद से एक मजबूत परिवेश बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए जनवरी 2020 में परिषद का गठन किया था। DPIIT ने एक बयान में कहा कि परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए था। ई कॉमर्स मंच फ्लिपकार्ट पर इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में सबसे ज्यादा बिक्री वायरलेस हेडफोन की हुई, जबकि साड़ी सबसे पसंदीदा परिधान बनकर सामने आई है। देश में ऑनलाइन खरीदारी के परिदृश्य को रेखांकित करने वाली फ्लिप ट्रेंड्स 2023 रिपोर्ट इस ई कॉमर्स मंच पर पंजीकृत 50 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के खरीदारी रुझानों को दर्शाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फ्लिपकार्ट पर साड़ी सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली फैशन उत्पाद रही। फैशन खंड में महिलाओं के कपड़ों की बिक्री सबसे अधिक हुई। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के खंड में हेडफोन ने सबको पीछे छोड़ दिया। प्रीमियम लैपटॉप की बिक्री में करीब 3.2 गुना और टैबलेट बिक्री में 100% उछाल भी देखने को मिला। रिपोर्ट कहती है कि इस साल घरेलू ई कॉमर्स मंच पर उपयोगकर्ताओं ने औसतन 7 घंटे का समय व्यतीत किया। महानगरों के अलावा दूसरी एवं तीसरी श्रेणी के शहरों से भी ऑनलाइन खरीदारी में काफ़ी उछाल देखा गया। सभी वैश्विक बदलाव भारत के पक्ष में काम कर रहे हैं, लेकिन देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में एक समावेशी वृद्धि की है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने सोमवार को ये बात कही। टाटा समूह के प्रमुख ने JRD टाटा व्याख्यान में कहा कि AI का प्रभाव रहेगा और अगर भारत ने इसके लिए तैयारी की तो ये फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि शीत युद्ध के बाद तुलनात्मक रूप से स्थिर और समृद्धि दौर के विपरीत अब ऐसा लगता है कि दुनिया ने अप्रत्याशित संघर्षों और आर्थिक अनिश्चितता को रास्ता दे दिया है। महामारी के चलते आपूर्ति श्रृंखला को भारी झटका लगा है। चंद्रशेखरन ने कहा, विशेष रूप से विकसित बाजारों में आर्थिक नरमी थी, हालात स्थिर होते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब हम 2 युद्धों के बीच में हैं और अमेरिका चीन व्यापार गतिरोध चल रहा है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।